दौला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 16 आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें जो प्रथम खंड है जीव स्थान नामक, उसमें अपना क्षेत्रानुगम का प्रकरण चल रहा है और चौथी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 77 पर नाम है 77। यहां से पढ़ेंगे अभी आगे हम। क्षेत्र में हमने देखा था, पहले तो हमने गुण स्थानों में यानी ओघ से देखा, अब मार्गणाओं में यानी गति की अपेक्षा चारों गतियों के जीवों में अलग अलग बात देख रहे थे। नारकियों की बात देखी, तीरियंचों की और मनुष्यों की, अब देवगति में देखेंगे यानी उनके फिर ऐसा ही कहेंगे रहने का क्षेत्र कितना है, विहार करके कहाँ तक जा सकते वगैरह वगैरह। अब यहाँ हम पढ़ेंगे 77 पृष्ठ पर 14 नंबर का सूत्र मिला आशाबेन। हाँ देखिए, देवगदिये देवेशु मिच्छा दिट्ठि पहुड़ी जाव असंजत सम्मादिट्ठि केवड़ी खेते लोगस्य असंख्ये यदि भागे। यानी उनमें भी गुणस्थान 1 से 4 तक है, कितने क्षेत्र में रहते हैं तो लोग के असंख्या के भाग में। एक क्षेत्र की बात है, स्पर्शन की नहीं। स्पर्शन में वो विहार की एरिया बहुत बड़ी होती है, यहाँ वो उतना विहार होगा एक जीव की अपेक्षा, परंतु वो जीव कम है इसलिए वो पूरी एरिया कवर नहीं होगी एट ए टाइम, एक समय में। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 77 और ये 14 नंबर का सूत्र अभी हमने पढ़ा, उसका हिंदी अर्थ देख रहे हैं। देव गति में, देवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के देव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब कितने उसमें पद लग सकते हैं उसकी बात अब यहाँ बताएंगे। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त हुए देव, यह उपपाद और मानांतिक की बात बाद में करेंगे, पहले इतने सब ले लें। उसमें फिर मिथ्या दृष्टि जी एक एक गुणस्थान की बात करेंगे। सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष्क देवराशि प्रधान है। वैसे भी देवों में ज्योतिषियों की संख्या सबसे ज्यादा, तिर्यक लोक से संख्यात वे भाग प्रमाण, संख्यात गुणा नहीं,
संख्यात बहुत कम है ना
उसका, संख्यात अभाव अभी बताएंगे उसको क्यों कैसे। एक हाँ यानी देखो देखो संख्यात गुणा नहीं, संख्यात अभाव। तिर्यक लोक कितना है, एक राज्य और 7 राज्य और लाख योजना, उसके बदले हमने 7 राज्य गुणा 7 राज्य गुणा लाख का 7वां भाग देखा था, यानी जगत प्रतर गुणा लाख का 7वां भाग। जगत प्रतर गुणा लाख का संख्या यानी 7वां भाग, और देवों की संख्या कितनी है, जगत प्रतर डिवाइडेड समथिंग, जगत प्रतर डिवाइडेड पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल वगैरह वगैरह देख रहे थे, उसके जगत प्रतर का भाग है और वो जगत प्रतर को किसी संख्या से गुणा है, और फिर ये टोटल जीव राशि और एक जीव की अवगाहना लेंगे तो फिर वो उसका संख्या तो भाग हो जाता है। अब ये शायद बताएंगे आगे। और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुण क्षेत्र वो तो है उसका, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष देव राशि प्रधान है। अब मारणांतिक समुद्घात और उपपाद रूप से परिणत हुए मिथ्या दृष्टि देव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, मारणांतिक में भी असंख्यात वाला विभाग होता है क्योंकि एक समय में मारणांतिक करने वाले कम हैं, इसलिए उनके एरिया कैलकुलेट करेंगे, भले वो ऊपर से नीचे, मिथ्या दृष्टि है तो ग्रहवेग से नीचे तक आते हैं परंतु वो मनुष्य में आएंगे, फिर इंच में भी जो जाने वाले 12वें तक के, तो उनके अवगाहना गुना उनकी राशि ये कम होगी, इसलिए तीन लोक का असंख्यात विभाग है। और मनुष्य लोक तथा तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में ही रहते। देखो मारणांतिक के लिए असंख्यात गुणा कहा, तिर्यक लोक का असंख्यात गुणा, ख्याल में है नहीं यहां पर बात। यहां पर क्षेत्र के प्रमाण को जानकर स्थापित करना चाहिए। देवों के शेष गुण स्थानों की प्ररूपणा ओग प्ररूपणा के समान है, क्योंकि वो देव भी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं, तो ओह प्ररूपणा ने सामान्य से जो बताया अभी हमने सभी गुणस्थानों की जो संख्या बताई वो ओह प्ररूपणा। अब देवों की बात सामान्य से बता दी, अब उसमें से अलग अलग देवों की बात ले लेंगे और कथन करेंगे। एवं यानी जो सामान्य देवों में जो कथन है ऐसा ही कथन भवनवासीय पौड़ी जाव उवरिम उवरिम गेवज्ज विमानवासीय देवाति, इसका हिंदी अर्थ हम देखते नीचे। भवनवासी देवों से लेकर उपरिम उपरिम ग्रेवेग के विमानवासी देवों तक का क्षेत्र इसी प्रकार होता है। भवनवासी से लेकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और फिर वो सौधर्म ईशान से लेकर ग्रेवेग तक, नवे ग्रेवेग तक, क्योंकि उसमें ये मिथ्या दृष्टि है वो चारों गुणस्थान वाले तो इसी में पाए जाएंगे, ऊपर के देव चौथे गुणस्थान वाले, तो ग्रेवेक तक यही कथन लागू होगा। अब इस देशामर्शक सूत्र से सूचित हुए अर्थ को कहते हैं, अभी इसको और खोल के बताएंगे, वह इस प्रकार है। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैकृत समुद्घात और उपपाद रूप से परिणत हुए भवनवासी मिथ्या दृष्टि देव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब यहाँ अकेले भवनवासियों को लिया, वो तो उपवाद करने वाले यहाँ से भवनवासी में जाने वाले कुछ संख्या योजन जाएंगे, मारणांतिक को छोड़ा उपवाद को लिया। अभी शंकाकार पूछते हैं, कर्ण रेखा के आकार से स्थित भवनवासियों के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, भवनवासियों में कौन उत्पन्न हो गया, मनुष्य तिर्यंच, वो तो जैसे मनुष्य तो ढाई द्वीप, ये तो एक राजू एरिया में जिसको हम कहीं ना असंख्या द्वीप समुद्रों में जो कहीं है, अब वहां से भवनवासी में जाने वाले हैं, तो भवनवासी कहाँ है, भवनवासियों के भवन पहली पृथ्वी में है ना,
नीचे है
जो हमने तीन भाग किए कौन से, पंक भाग खर भाग और बहुभाग, भवनवासी ने असुर कुमार तो बीच वाले में भी होते हैं, यानी वो कहाँ तक जाएंगे, तो कहते तिरछे तिरछे, अभी ये तो एक राजू एरिया, ये अभी एक राजू एरिया लिया, जो अपने ही नीचे उत्पन्न होने वाले स्ट्रेट नीचे आएंगे, परंतु यह तिरछा जाने वाला है तो उसको मोड़ लेने पड़ेंगे। यानी यहाँ का जीव मान लेते यहाँ उत्पन्न होने वाला है तो ऐसा के ऐसा ट्रैवल हो जाएगा ना, ये कर्ण रेखा है यानी तिरछा है। तिरछा गमन नहीं होता, पर तिरछा वहां जाके उत्पन्न होने वाला है तो उसको मोड़ लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है एक मोड़ यहाँ तो दो मोड़ वाला, और अंदर कहीं जाना है तो दो मोड़ लिया उसने, और पीछे के बाजू में जाना था इसलिए यहाँ दो मोड़ लिया, तो दो मोड़ वाला लिया जीव। शंकाकार की शंका पूछते अभी हम। कर्ण रेखा के आकार से स्थित भवनवासियों के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव दो विग्रह करके दो मोड़ लिए उसने, जगत श्रेणी के संख्यात वे भाग प्रमाण आयाम रूप से उत्पन्न होते हुए पाए जाना संभव है, क्योंकि तिर्यंच यहाँ का जो तिर्यंच है वो बाजू जाएगा, मान लेते तो राजू प्रमाण तो ऐसा तो जाएगा ही जाएगा, और कुछ योजन नीचे भी जाएगा, दो मोड़ लेना है उसको, इसलिए कहा जगत श्रेणी का संख्यात भाग। इसलिए यानी क्या कहना चाहता है तो समझो ना, राजू प्रमाण आड़ा गया और फिर नीचे उतरा, ये तो संभव है। इसलिए भवनवासियों का उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा होना चाहिए, ये उसका प्रश्न है। जगत श्रेणी का संख्यात भाग तो ये आयाम हुआ, और फिर उसकी अपनी जो अवगाहना है, अपनी जो राशि है उससे उसको गुणा करना है, उसका समाधान। यदि उपपाद क्षेत्र का आयाम यानी जहाँ उत्पन्न होना है वहां तक की लंबाई जगत श्रेणी के संख्यातवे भाग प्रमाण पाया जाता तो उक्त कथन सत्य होता। क्या कहना चाहते हैं? यदि ऐसा होता तो, किंतु उपपाद क्षेत्र का आयाम संख्यात सूचंगुल मात्र ही है, क्योंकि यहां से संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियों के विमानों का अवस्थान नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता कह रहे कहते थे संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियों के विमानों का अवस्थान नहीं पाया जाता है, तथा तिर्यक लोक में भी सर्वत्र भवनवासियों के आवास नहीं है, यानी ऊपर भी सर्वत्र उनके आवास नहीं है, क्योंकि तिर्यक लोक के मध्यवर्ती असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में ही भवनवासी देवों का अस्तित्व देखा जाता है। यानी क्या कहते हैं, ये पूरी आप राजू वाली इतनी एरिया ट्रेवल करके नीचे उतरते ऐसा कहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो भवनवासियों के भवन पूरे राजू तक फैले हुए नहीं है, बीच में है। हमने तो ये भी देखा कि मनुष्य लोक के भी नीचे नहीं, वो बाजू में है, परंतु एकदम राजू तक नहीं फैले हुए, ये उनको कहना है। यानी पूरे राजू तक इतना ट्रैवल होके नीचे उतरेगा ऐसा नहीं, ये उनका कहना
है। ये संख्या योजना नीचे जाकर भवनवासियों का विमानों का अवस्थान नहीं है, ऐसे क्यों कहा? भवनवासी का जो भवन है वो तो संख्यात योजन नीचे है ना,
संख्यात योजन ही नीचे है, परंतु यहाँ
मनुष्य ब्लॉक के नीचे नहीं है, तो 45 लाख योजन तो जाना ही पड़ेगा। मनुष्य लोक के नीचे भवन वासियों के भवन नहीं है,
45 लाख योजन यानी वो तो संख्यात योजन है ना,
तो संख्यात योजन
वो राजू में नहीं होता है। देखो यहाँ कुछ अलग कहना चाहते हैं।
नीचे संख्या तो जो नीचे जाकर अवस्थान नहीं है ऐसा बताया, तो नीचे तो संख्या की योजना नीचे ही होगा ना,
उसी का अर्थ लगा रहे हैं। उपपाद क्षेत्र का आयाम संख्या सूचंगुल मात्र ही है, यानी वो संख्या सूचंगुल को ही लिया उन्होंने,
हाँ योजन नहीं लिया, सूचंगुल लिया उन्होंने। सो कर भाग भी नहीं है ऊपर।
जरा सुनो मुझे, देख उपपाद क्षेत्र कायम जगत श्रेणी के संख्या के भाग प्रमाण माया जाता तो उक्त कथन सत्य होता, परंतु उपपाद क्षेत्र कायम संख्या सुचंगुल मात्र ही है, यानी वो राजू में नहीं है, सुचंगुलों में है,
नीचे के साइड पे।
उपपाद क्षेत्र का आयाम, आया मैंने कोई भी आड़ा नीचे ऐसा सब ले, हाँ। क्योंकि इससे संख्यात योजन नीचे जाकर इससे का अर्थ होता है, वो हम यहाँ से नहीं लेना है, इससे का अर्थ होगा देखो ऊपर पढ़ते प्राकृत में
या आयाम माना हाइट्स ले, हाइट लेना पड़ेगा ना।
सच्चम एदम जई सेरिया संकेत यदि भाग मेत आम वो वाद खेत से लभरी, ये ऐसा होता तो सत्य होता, किंतु संख्यज सूची अंगुल में तो छेव, ये तो संख्या सूचंगुल मात्र है, छेव एतो संख्यज योजनानी हेठा गंतुन भवनवासी विमानानं अवठान अनुवलंबादो।
क्योंकि भूगोल की पुस्तक पे मेरे ऐसे पढ़ा था कि संख्या,
सुनो जरा हम इसका अर्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो पंख भाग और खर भाग में उनके है आवास ये हमको पता है, भवन होते हैं उनके, फिर भी ये ऐसा क्यों कहा, उसी की बात हम प्राकृत में से पढ़कर निकाल रहे हैं। वहाँ संख्या सूचंगुल क्यों कहा, यही तो है ना। इसका अर्थ ऐसा हम पेंडिंग रखेंगे, उसका एग्जैक्ट वो क्या कहना चाहते वो ख्याल में नहीं आ रहा है कि उपपाद क्षेत्र का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग प्रमाण पाया जाता तो उक्त कथन सत्य होता, एक बात, किंतु उपपाद क्षेत्र का आयाम संख्यात सूचंगुल मात्र ही है, यह ऐसा हो सकता है पहले जो आड़ा गमन होता है उसकी बात होगी, जो मोड़ से जाता है सीधा, एक समय में जाने वाला तो सीधा जाएगा, मोड़ से जाने वाले में ये पॉसिबिलिटी है, पहले आड़ा जाके नीचे अगर वो लेते हैं तो, अभी उसके बाद हम ऐसे ही रखेंगे, केवल पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। तो उपपाद क्षेत्र का आयाम संख्या सूचंगुल मात्र ही है, आयाम क्योंकि संख्यात योजन इससे उन्होंने शब्द डाला है, एतो संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियों के विमानों का अवस्थान नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं, ऐसा इसको ऐसा ही रख देते हैं, तथा तिर्यक लोक में भी सर्वत्र भवनवासियों के आवास नहीं है, क्योंकि तिर्यक लोक के मध्यवर्ती असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में ही भवनवासी देवों का अस्तित्व देखा जाता है। दूसरे, उपरिम देवों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंचों के समान, जैसे ऊपर जाने वाले जो तिर्यंच है, भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्यों का अपनी उत्पत्ति की दिशा को छोड़कर तिरछा गमन होता हुआ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों की बाण के समान सीधी गति से भवनवासी लोक के समीप आकर अधस्तन श्रेणी में स्थित भवनवासी देवों में उत्पत्ति देखी जाती है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ उनको ऐसा कहना है, देवों में जाने वाले तो ऊपर जाएंगे, परंतु नीचे जो विमानवासी ऊपर जाके फिर भी मोड़ ले सकते हैं। अब नीचे जाने वाले के लिए क्या उन्होंने रूल बताया, पहले आड़ा गर्म गमन होगा फिर नीचे चले जाएंगे, ये कहना चाहते
हैं। तो आड़ा गमन तो हम लोग जो स्वयंभू गमन समुद्र के जो कोने में जो
उपपाद में वो आड़ा गमन फिर होगा, फिर भी वो आड़ा गमन है।
अच्छा,
उसको उपपाद में नहीं गिनते, दूसरे दंड को गिनते हैं। उपपाद का आयाम जब गिना है,
आड़ा नहीं गिनते।
उपपाद में किसको गिनना, पहला मोड़ तक नहीं गिनना, दूसरे पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक को गिनना है। हाँ, उपपाद क्षेत्र में ऐसा है। उसके दंड कहाँ पर स्थित है, मारणांतिक के काल में ऐसा और ऐसा फैला है। मारणांतिक में हम इसको दोनों दंडों को काउंट करते हैं, उपपाद दंड में सेकंड दंड को ही लेते हैं। इसलिए ये भले श्रेणी का संख्यात्वा भाग होता तो ठीक है, परंतु इसको गणना ही नहीं है। नीचे कितने जाएंगे तो थोड़े योजन जाएंगे।
सुचंगुल पर
अभी सुचंगुल मत को, अभी जो कुछ है उसको यहाँ देखो ना, यानी बाण के समान सीधी गति से पहले ऐसा आया और फिर वो नीचे भवनवासी में गया। वो भी एकदम राजू के अंत तक नहीं, बीच वाले कुछ एरिया में वो भवनवासी उनके भवन है। यानी पहले संख्यात योजन जाकर वहाँ नहीं, वो फिर मोड़ नहीं लेते हैं,
पहले
आड़ा गमन करके फिर नीचे जाते हैं, ये इसका कथन होना चाहिए। उपपाद का आयाम जब कहते हैं तो पहले मोड़ तक की तो बात नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ तो भले मारणांतिक के काल में प्रदेश पहले हो, उपपाद के काल में वो पहले मोड़ तक आ जाते प्रदेश, तो दूसरा जो दंड है उसको काउंट करना है। अब ये शंका पूछ रहे शंकाकार, यह कैसे जाना जाता है। उन्होंने बोला ना, पहले बाण की तरह सीधा जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो ये कैसे जाना। उसका समाधान, भवन वासियों का उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता। नहीं तो तिर्यक लोक का कुछ संख्यात व भाग या असंख्यात बहुभाग कहना पड़ता उपपाद क्षेत्र में। हाँ, वो पहला दंड लेते ही नहीं, उसमें सेकंड दंड को ही उपपाद क्षेत्र कहते हैं। मारणांतिक में उसको हम काउंट कर सकते हैं, पर उपपाद में उसको नहीं। इसी से जाना जाता है कि जो वर्टिकल उसका नीचे उतना ही लेना है उपपाद में। और असंख्यात भाग तभी बनेगा ना, श्रेणी का असंख्यात भाग हो गया, वो जगत पत्र का असंख्यात भाग हो गया। अपने रहने के स्थान से नीचे जाकर भवनवासी देवों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य तिर्यंचों के उपपाद क्षेत्र का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण पाया जाता है, मात्र इसीलिए उसका ग्रहण करना युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार से उनमें उत्पन्न होने वाले जीव बहुत थोड़े होते हैं। ये भी बात बताएं, ऐसे जीव बहुत कम है। फिर शंकाकार पूछते हैं, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। उसका समाधान, 79 पेज पर आए अभी हम, उपपाद परिणत। उपपाद परिणत करते हैं मनुष्य 3 इंच मरकर अभी भवनवासी में उत्पन्न हुआ, उपपाद परिणत उनका भव का पहला समय। भवनवासी देव तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, इस प्रकार व्याख्यान से उक्त कथन जाता है जाना जाता है। यानी ये स्टेटमेंट इटसेल्फ प्रूफ है, इसी से वो जाना जाता है। एक तो वो जीव कम है और दूसरी बात पहले आड़ा जाके फिर नीचे चले जाएंगे। अब मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए, इसलिए उपपाद वाले उसके साथ सारे लिए स्वस्थान वगैरह के साथ उसको ले लिया। अब मारणांतिक को अलग रखा है। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में, अभी मारणांतिक तो उसने वो फैले, प्रदेश फैले वहां तक भवनवासियों के भवनों तक। तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में, देखो यहाँ असंख्यात गुणा लिया तिर्यक लोक का, क्योंकि भले एक जीव के इतने फैले हैं परंतु जीव भी ज्यादा है ना, तो उन सबके काउंट करेंगे तो असंख्यात गुणा हो जाता है। तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र में, और अढ़ाई द्वीप से भी असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ये समझ में है ना मारणांतिक में और उपोपाद में क्या अंतर है? मारणांतिक में तो ऐसे आड़े दंड भी उसको लेना और वर्टिकल जो है उसको भी लेना, तो एक जीव का दो जीव का जो कोई असंख्या जीव है उनका एट ए टाइम मारणांतिक भी अंतर्मूर्तक पड़े रहते हैं, तो उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। उपोपाद में एक समय वाली बात होती है, इसमें तो अंतर्मूर्ति होती है और एक के बाद एक अवली के असंख्या से भाग प्रमाण उसमें होते रहते हैं, इसे उनकी एरिया तिर्यक लोक से असंख्यात गुना हो जाती। शेष कथन ओघ प्ररूपणा के समान है। ओघ प्ररूपणा ने सामान्य देवों के लिए जो कथन किया वैसा होता। इतनी विशेषता है कि असंयत समय दृष्टियों का भवनवासियों में उपपाद नहीं होता। तो मेरा ये प्रश्न है आशाबेन, आप जरा विचार करना, भवनवासियों में उत्पाद है उपपाद है उनमें जन्म लेना, तो भवनवासियों में जन्म लेते समय, अभी देवों में गुणस्थान चार ही होते हैं, तो भवनवासियों में जन्म लेते वहाँ गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं जन्म के समय? अभी तो बताए ना समय दृष्टि मरकर जाता नहीं है, तीसरे में मरण होता नहीं है एक और जन, अब स्वयं उत्तर देगी थोड़ी भूल करेगी तो ख्याल में रहेगा कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं है, पहला और दूसरा गुणस्थान वाला जाएगा वहां मरकर। अभी जो वैमानिक है सौधर्म से लेकर उसमें तो समय दृष्टि भी जा सकते, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में समय दृष्टि वहां नहीं जाएंगे, वहां जाने के बाद समय को प्राप्त कर सकते अंतर्मूर्ति में, जन्म से कोई वहां समय दृष्टि नहीं है, ख्याल में बात। हाँ वान व्यंतर यानी व्यंतर और ज्योतिषी देवों का क्षेत्र देव सामान्य के क्षेत्र के समान है, यानी जो हमने देखा ना तीन लोग का असंख्या का भाग वगैरह वगैरह। इतनी विशेषता है कि असंयत समय दृष्टियों का वान व्यंतर और ज्योतिषियों में उपपाद नहीं होता, जैसे भवनवासी में नहीं होता वैसे इनमें भी नहीं होता। अब 18 नंबर का जो ऊपर गाथा है उसको पढ़ें, गाथा सूत्र। पणुवीसम असुराणम शेष कुमाराण दश धनु छेय वेंतर जो दिशियाणम दश सत्त धनु मुनेय हुआ। उनकी हाइट बता रहे कितनी होती है। भवनवासियों के 10 भेदों में से कौन से 10 भेद है? वो असुर कुमार है, नाग कुमार है, उदधि कुमार है, सनित कुमार है, वात कुमार है, ऐसे बहुत सारे 10 भेद है। तो उनमें से प्रथम भेद असुर कुमारों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष, यही जो बड़े हाइट वाले होते हैं, और शेष 9 कुमारों के, कुमार ने उनके वो नाम है, शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है, तथा व्यंतर देवों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष और ज्योतिषी देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष जानना चाहिए। इस पूर्वोक्त उच्छेद से, यहाँ उच्छेद है हाइट देवों की हाइट, यहाँ अवगाहना क्षेत्र ले आना चाहिए। हाइट बताते हैं तो देवों में उसका विष्कंभ कितने भाग प्रमाण है?
संख्या तो नहीं,
दसवा देवों के लिए, दसवा भाग मनुष्यों के लिए, 9वां भाग नारकी के लिए, 8वां भाग। फिर विषकम्भ मैंने गोलाकार की, हम उसको व्यास के परिधि निकालेंगे उसका, वो
तीन गुना करो,
तीन गुना करो या व्यास के चौथे भाग से गुना करो।
हाँ।
तो ये हमको वो गोलाकार का क्षेत्रफल है, उससे हाइट से गुना करेंगे, या गोलाकार का क्षेत्रफल है अभी जो मारणांतिक वगैरह या एरिया जो कितने लंबा उसने दंड बनाया उससे गुणा करेंगे और उसको राशि से गुणा करेंगे, तो ये अवगाहना क्षेत्र मिलेगा। ये तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी की बात हो गई। अब सौधर्म और ईशान कल्प में जब किसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ है, कितने हाइट तक उसके जीव पाए जाते हैं, वो सब मालूम होना चाहिए। स्वस्थान स्वस्थान यानी उनका रहने का विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि देव। देखो इनकी संख्या ज्यादा है ना, इसलिए इसको अलग से लिया, यानी वो करीबन जितनी संख्या उसके बहुभाग प्रमाण इनकी, बाकी जो साधन वगैरह वो तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर सर्व पदगत क्षेत्रों की परीक्षा, सर्व पद नहीं से स्वस्थान स्वस्थान विहारत वगैरह उनकी परीक्षा ने वो कैसे लाना वगैरह, भवन वासियों के क्षेत्र के समान करना चाहिए, यानी उसके ऊपर हमने जो चर्चा की थी वैसे यहाँ पर भी समझना चाहिए। देव अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं। इस प्रकार जो अन्य आचार्यों का वचन है वह घटित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण वैकृत समुद्घातगत क्षेत्र के मानने का प्रसंग आ जाता है। नहीं नहीं अवधि ज्ञान का क्षेत्र उनका जो है ना, ये सदर में ईशान डेढ़ राज्य ऊपर है तो डेढ़ राज्य नीचे तक उनका अवधि का क्षेत्र है, पहली पृथ्वी तक उनका अवधि का क्षेत्र है, तो वहां से वो पूरा मानना पड़ेगा उनके एरिया विक्रिया वाले। विहार अलग है, विक्रिया अलग है। विक्रिया ने अपने इतने शरीर बना के फैलेंगे या एक ही शरीर बड़ा करेगा, तो ये बन नहीं सकता है। विहार यानी वो विहार करके जाते हैं। विक्रिया ने नया शरीर बना के भी जाते विक्रिय, हाँ वो अलग बात है, क्योंकि ऐसा मानने पर वो बात है ना, अभी हम पेज नंबर 80 पर आए कि लोक के संख्यात विभाग प्रमाण वैकृत समुद्घातगत क्षेत्र के मानने का प्रसंग आ जाता है। सौधर्म और ईशान कल्प में देव मिथ्या दृष्टियों के मारणातिक समुद्घात और उपपाद संबंधी क्षेत्र, देव सामान्य के मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत के समान जानना चाहिए। यानी वहां से मारणांतिक करेंगे तो उसका क्षेत्र हम यहाँ निकाल सकते। उपपाद क्षेत्र के स्थापित करते समय उपपाद यानी वहां मरकर जाने वाले, तो यहाँ से मनुष्य तीरियन से जाएंगे वहां पर। सौधर्म ऐशान देव मिथ्या दृष्टियों की विष्कम्भ सूची से गुणित जगत श्रेणी को स्थापित करके, देखो यह क्या कहना चाहते हैं, ये याद है कि भूल गए? विष्कम्भ देवों की विष्कम्भ सूची है ना, क्या वो देवों की चौड़ाई नहीं लेना यहाँ पर, उनकी संख्या निकालते थे तो जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय उनकी विष्कम्भ सूची। विष्कम्भ सूची का अर्थ होता है कितने जगत श्रेणियां लेना हमको, क्षेत्र की अपेक्षा हम लेते थे, ये मान लेते ये 7 राजू एरिया है तो इसमें ऐसे 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी कितने लेना है, तो इसकी जो तो उसको जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बहुत था, उसको कहेंगे विष्कम्भ सूची। ये याद है ना, हमने क्षेत्र इसके पहली पुस्तक में देखा था, पहले ने इसके पूर्व वाली तीसरी पुस्तक में जहाँ संख्या निकालनी थी, तो जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय विष्कम्भ सूची, तो यहाँ जितने प्रदेश हो गए उतनी संख्या उन देवों की है, यानी टोटल राशि अपनी भाषा में टोटल राशि यहाँ स्थापित। हाँ देवों की, देवों की अभी सौधर्म ईशान की बात चल रही है। सौधर्म ईशान में मिथ्या दृष्टि देव कितने हैं, तो उसके लिए उनकी विष्कम्भ सूची स्थापित करना। वो कुछ सुचंगुल में कुछ था ना अभी, हाँ यानी सौधर्म ईशान देव मिथ्या दृष्टियों की राशि अपनी भाषा में, क्योंकि विष्कम्भ सूची से गुणित जगत श्रेणी यानी उनकी संख्या राशि देव राशि सौधर्म ईशान की राशि। अभी जो मूल राशि है उसको स्थापित करके पल्लोपम के असंख्यातवे भाग रूप सौधर्म और ऐशान संबंधी उपक्रमण काल से अपवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण होता है। एक जीव उत्पन्न हुआ अंतर्मुख, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इस तरह से वो तो पल्ले का असंख्यातवा भाग हो जाता है उपक्रमण रूप काल। उससे उसको भाग देने पर उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या आती है। पुनः असंख्यात योजन रूप दूसरे दंड से उत्पन्न होने वाले जीवों को लाना इष्ट है, क्योंकि उपपाद में दूसरा दंड लेते हैं, यह हर सब जगह ये उनकी बात ऐसा समझकर कितना है वो असंख्यात योजन रूप। ऐसा समझकर पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण एक दूसरा भागार स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इतनी योजन वाला दूसरा दंड में इतने जीव होंगे वो तो उससे भी कम होंगे, उससे भी असंख्यात वे भाग प्रमाण होंगे। पहले में पहले उपपाद होने वाले जीव लिए टोटल जीवों का जो प्रमाण है उसको असंख्यात से भाग देंगे तो उपपाद वाले जीव मिले। उपपाद वालों में भी दूसरे दंड में असंख्यात योजन वाला दूसरा दंड वाले जीव उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण है वो प्रमाण निकाला। तथा एक प्रतरांगुल प्रमाण विष्कम्भ से और जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग प्रमाण आयाम से क्षेत्र को स्पर्श करते हैं, यानी उनका क्षेत्र कितना है तो उनकी अवगाहना निकालनी है। प्रतरांगुल प्रमाण विष्कम्भ वाली बात है ना, अभी ये विष्कम्भ है ना उसकी अपनी उसकी चौड़ाई प्रतरांगुल क्यों कहा, अंगुली तो कुछ उसमें कैलकुलेट करेंगे। और जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग प्रमाण आयाम यानी उपपाद में इतना दंड फैला है इतने क्षेत्र को स्पर्श करते हैं, इसलिए प्रतरांगुल गुणित जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग प्रमाण गुणकार स्थापित करना चाहिए, यानी एक जीव की इतनी अवगाहना तो इतने। एक्चुअली ये जो विष्कम्भ जो है वो जगत श्रेणी का ही विष्कम्भ लिया है, ये आयाम
ये प्रथम रूप विष्कम्भ तो शरीर की ज्यादा ही लेना है ना।
नहीं ऐसा लगता था मेरे को प्रतरांगुली गुणित जगत श्रेणी का संख्या तो हाँ उसकी एरिया ही लेना है एरिया ही लेना। सर्वत्र रुजुगति से उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं, क्योंकि श्रेणी की अपेक्षा उच्च श्रेणियां बहुत पाई जाती हैं। यानी सीधा गमन करके अपने विमान में उत्पन्न होने वाले जीव कम ही होंगे ना, एग्जैक्टली ऊपर जहां से वो बैठा है खड़ा है जो कुछ है मर के सीधा ही जाने वाले जीव कम होंगे। उससे थोड़ा एक फुट भी इधर होगा तो श्रेणी से उच्च श्रेणी यानी अलग श्रेणियां जो ज्यादा होगी। अपनी श्रेणी ने सीधी पंक्ति आकाश की सीधी श्रेणी में ऊपर जाने वाले जीव वो कौन होंगे, मरकर वहीं पर उत्पन्न होने वाले, वो रुजुगति की बात है। यानी रुजुगति से रुजुगति यानी सीधा एक ही समय में पहुंचने वाले जीव वो तो कम हो गए असंख्यात वे भाग प्रमाण हो गए। उच्च श्रेणी ने दूसरी पंक्तियों में उत्पन्न होने वाले, उच्च श्रेणी ने अपनी जो श्रेणी छोड़कर अन्य श्रेणी में उत्पन्न होने वाले।
ये वैज्ञानिक शब्द का तो सभी देव मध्य लोक तक करते हैं ना।
हाँ पर उनकी संख्या कम होती है ना।
हाँ पर मध्य लोक तक सभी देव कर सकते हैं, ऐसा मेरा क्वेश्चन है।
सभी नहीं करते, कौन से सौधर्म वाले सभी की कहाँ की बात करें,
सौधर्म वाले तो करेंगे पर भवनवासी पवनत्रिक के देव
वो स्वयं देखो वो स्वयं गमन कहाँ तक करते हैं ऐसी भाषा आती है बिहार की में लेते उसको बिहार कहाँ तक होते हैं तो स्वयं गमन करेंगे तो डेढ़ राज्य तक और अन्य जीव उनके अन्य देव ले जाएंगे तो सोलवे स्वर्ग तक। हाँ। ऐसे ऊपर से आते तो सहस्रार तक के तो दो राजू नीचे तक जाते हैं, नरक में भी गमन करके जाते हैं, विहार वाली बात अलग करते हैं, विहार व स्वस्थान और विक्रिय अलग अलग लिया है उन्होंने। विक्रिया की बात अलग है, वो विक्रिया अन्य शरीर बनाकर जाना बात अलग है, विहार में हाँ वो खुद के शरीर के साथ विहार करते हुए, ऐसे दो बातें उसमें आती है। हम तो ऐसा कहते हैं मूल शरीर वहीं रहता है और उत्तर शरीर से यहाँ आते हैं। देखो फिर शंकाकार पूछते हैं, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों का उपपाद क्षेत्र भवन, अभी इसका उल्टा प्रश्न है, भवनवासियों में उन्होंने पूछा था वो श्रेणी का संख्या का भाग क्यों नहीं है, अब यहाँ कहते भवनवासी की बात सिद्ध की ना, क्योंकि पहले आड़ा जाएगा फिर नीचे जाएगा तो कुछ योजन ही होगा। अब ये पूछते हैं सौधर्म और ईशान में भी ऐसा क्यों नहीं कहते, यहाँ उपपाद क्षेत्र लंबा चौड़ा क्यों आपने स्वीकार किया, भवनवासी के लिए नहीं स्वीकार किया, ये प्रश्न है। फिर प्रश्न शंका पूछते पढ़ते हैं, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों का उपपाद क्षेत्र, उपपाद क्षेत्र ने दूसरा दंड लेना, मारणांतिक तो सभी दंडों में फैले हुए हैं, फिर पहले मोड़ तक खींचे होते हैं आत्म प्रदेश, तभी मारणांतिक किए हुए जीवों के आत्म प्रदेश दूसरे तीसरे दंड में पड़े हुए हैं, तो इसलिए कहते उनका उपपाद क्षेत्र भवनवासी देवों का उपपाद क्षेत्र के समान, देवों का नहीं देवों के उपपाद क्षेत्र के समान तिर्यक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्यों नहीं होता, क्योंकि भवनवासियों में हमने देखा उसका असंख्यात भाग क्यों, पहले मोड़ तक आड़ा जाएगा और फिर नीचे उतरेगा, इसलिए वो तिर्यक लोक का असंख्यात भाग लिया था, ऐसा यहाँ क्यों नहीं कहते, ये उनका प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि देखो वहां क्या था, भवनवासियों के वैसे भी संख्यात योजन होते और यहाँ तो 31 पटल कहाँ तक हो गए, डेढ़ राज्य तक हो गए, 31 पटल है सौधर्म ईशान, तो 31वां पटल तो डेढ़ राज्य ऊंचाई तक है, क्योंकि सौधर्म ईशान कल्प के 31वें प्रभा पटल में उत्पन्न होने वाले सभी तीर्यंचों के दूसरे दंड का आयाम, तीर्यंचों की मुख्यता लिया क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा है, मनुष्य जाएंगे तो भी बीच में से जाएंगे, जगत श्रेणी के संख्यातवे भाग प्रमाण पाया जाता है, समझ में आती ना, इसलिए जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग क्यों, क्योंकि डेढ़ राजू वो क्या है, सात राज्यों का संख्यात्व भाग है, डेढ़ राजू जो है कितने हाइट में है, डेढ़ राजू है, थोड़ा कम लेना उसमें से ध्वजदंड वगैरह को कम करके, मगर मान लेते कोई एक राज्य तक भी उत्पन्न होगा वो क्या है, सात राज्यों का वो संख्यात्व भाग होगा, यहाँ तक बात ख्याल में, यानी दूसरा दंड जो है वो जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग है, इसलिए सौधर्म ईशान कल्प के देवों का उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुना होता है, यह सिद्ध हुआ, समझ में है ना बात, क्योंकि उनकी संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनके जो उपपाद वाला क्षेत्र, नीचे से चौथी लाइन पेज नंबर 80 पर 80, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों के शेष गुण स्थानों के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र का कथन देव सामान्य के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र के समान जानना चाहिए। अब सनत कुमार कल्प से लेकर उपरिम उपरिम ग्रेवेक तक मिथ्यादृष्टि देवों का स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्र ओघ सासादन सम्यक दृष्टि के स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्र के समान है, क्योंकि उनकी संख्या और कम होती है ऊपर ऊपर, तथा उन्हीं के यानी सनत कुमार आदि के सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्य दृष्टियों के स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्र ओघ सासादन सम्य दृष्टि आदि के स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्रों के समान होते हैं। ओघ सासादन ने देवों में इन जनरल सामान्य देवों की जो बात बताई थी उसकी बात। अब आगे 16 नंबर का सूत्र पेज नंबर 81, अणु दिशादि जाव सौवठ सिद्धि विमान वासीय देवा असंजद सम्मादिथि केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भाग। अनुदिशा देने अनुदिश और अनुत्तर, अनुदिश में 9 विमान है, अनुत्तर में 5 है, इसलिए अनुदिश से लेकर कहाँ तक बताया, सर्वार्थ सिद्धि तक, सर्वार्थ सिद्धि बीच वाला है, उसके बाजू में 4 विमान, सबको मिलकर 5 को मिलकर अनुत्तर कहते हैं, उसके आगे कोई नहीं विमान, अनुत्तर, उत्तर यानी उसके पश्चात, ये लास्ट उनकी जो ऊपर का पटल है 5 विमानों का, सेंटर में जो है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। देखो 9 अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक के, अभी इसमें गुणस्थान कौन कौन से होते हैं मालूम है आपको,
चौथा
ही होता है, 11वां वाला यहाँ से मरकर जाता है, मरते ही दूसरे समय में उसका चौथा गुणस्थान, श्रेणी में मरकर वहां जाएंगे तो भी, मनुष्य में है तब तक गुणस्थान 11वां, मर गए नेक्स्ट समय में देवगति चालू हो गई, भले वे विग्रह गति में, गुणस्थान चौथा। तो इसलिए असंयत सम्य दृष्टि 9 अनुदेशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक के असंयत सम्य दृष्टि देव कितने क्षेत्र में रहते, इसलिए असंयत ही होते वो बता दिया उन्होंने, वहां अन्य कोई गुणस्थान नहीं और वहां के कोई चौथे से गिरकर नीचे जाते भी नहीं, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैक्रिक समुद्घात मारणांतिक समुद्घात भी हा? और उपपाद को प्राप्त हुए, अभी हम मारणांतिक और उपपाद को भी ले लिया, उक्त असंयत सम्य दृष्टि देव सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में। तो देखो उनको मारणांतिक या उपपाद करेंगे तो कितना बड़ा होगा, यहाँ से लेकर करीबन 7 राज्य, फिर भी कितना लिया, तिर्यक लोक का भी असंख्यात भाग लिया, क्यों, वहां जन्म कौन लेंगे, मनुष्य कितने होते हैं संख्या, उसमें से उस वहां तक जाने वाले एट अ टाइम कितने हो गए, बहुत गिने चुने हो गए, तो उनकी एरिया कितनी होगी, जाएंगे तो अपनी इतनी इतनी सी अभी एरिया लेके ऐसे ऊपर तक गए, पूरा भले 7 राज्यों फैला है पर उसका एरिया कितना होगी, उसको संख्या से गुना करेंगे तो कुछ नहीं ज्यादा होगा, और जाएंगे तो सीधे मनुष्य लोक से ऊपर जाएंगे, जब तीर्यंश मरकर जाते तो कहीं ना कहीं नहीं, और उनकी संख्या भी ज्यादा होती है, और यहाँ जाएंगे तो अपने मनुष्य लोक में से सीधे ऊपर जाएंगे, वो भी एट ए टाइम संख्या जाएंगे, इसलिए उनकी एरिया कितनी है, संख्यात्व असंख्यात्व, लोक का भी असंख्यात्व, उर्ध्वलोक का भी असंख्यात्व, अधोलोक का भी और तीर्यक लोक का भी, 4 लोकों के बताए ना,
4 लोक बताए,
4 लोगों का असंख्यात भाग बताएं। हाँ
ये सर्वार्थ सिद्धि आदि जो 5 विमान है
हाँ।
वो 45 लाख योजन के अंदर ही है
हाँ।
क्या ऐसा जाके ऐसा भी जाएगा ऊपर जाके,
अच्छा अच्छा आप ऐसा हाँ। की बात कर रहे हैं हाँ।
हाँ?
नहीं पहले सीधे जाएंगे बाद में आड़े जाएंगे,
वैसी बात नहीं, उसका एरिया कितना होगा,
बीच वाला तो लाख योजन का है
हाँ।
तो साइड
जम्बूद्वीप जितना
हाँ। और बीच में वो एरिया गैप भी होगी ना विमानों में,
गैप होगी,
बाहर भी हो सकते हैं ना, केवल 2.5 लाख ढाई में होगी ऐसा नहीं,
यानी उसकी एरिया 2.5 द्वीप से अधिक होगी, इतना ही मुझे पूछना है, 5 जो है
सीधे पहले जाएंगे बाद में आड़े जाएंगे, छोटा धन
ये अनुत्तर में जो सर्वार्थ सिद्धि के अलावा जो 4 विमान है वो असंख्यात योजन के एक संख्यात योजन से,
मुझे अभी याद नहीं है पर वो बड़े होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी असंख्यात जीव है ना
हाँ।
देव असंख्यात है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात है
हाँ।
बाकी में तो असंख्यात है, वो ढाई द्वीप से बाहर ही आने चाहिए, उनकी एरिया बड़ी होगी। तो यहाँ तो सभी लिए ना, मारणांतिक उपवास सबको लेकर चार लोगों के असंख्यात विभाग में लिया,
और
ढाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र
तो
में असंख्यात
गुने,
ऐसे भी हाइट वाइज भी वो असंख्यात गुना हो ही जाता है। हाँ, ऐसे यहाँ कथन करना चाहिए। हाँ,
बड़ा है,
सस्तन सस्तन भी बड़ा है उनका, सस्तन रहने का भी ढाई दिन से असंख्यात गुना है। चलो, आपके प्रश्न का उत्तर आपको ही मिल गया।
हाँ,
इतनी विशेषता है कि अभी अकेले सर्वार सिद्धि लिया, सर्वार सिद्धि में स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात, इन स्थानों में देव मानुष क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो 45 लाख योजन है तो 1 लाख योजन वाला है। मानुष क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन वाला विस्तार वाला है, उसके एरिया काउंट कर सकते हैं। और सर्वार सिद्धि अकेला विमान कितना? 1 लाख योजन विस्तार वाला है, तो इसलिए उसका संख्यात्व भाग, क्योंकि
हमने देखा था या पढ़ा था कि सर्वार सिद्धि के देव तीर्थंकर के समोशरण में नहीं आते, उनको भले गमन करने की शक्ति है,
ग्रहवेग के ऊपर कोई भी नहीं,
तो इन विहारवत कह रहे हैं, तो विहारवत कहाँ जाए?
अपने अपने विमानों में।
अच्छा,
अपने विमानों में जाएंगे।
अच्छा, कश्मीर घूमने जाएंगे।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, देखो देखो, स्वस्थान यानी जीवों का अपना रहने का ठिकान, उसमें दो भेद किए, स्वस्थान स्वस्थान जहाँ वो उत्पन्न होते रहते वो हमेशा रहते हैं, और विहारवत स्वस्थान यानी अपनी एरिया छोड़कर घूमकर भी आते हैं ना, जैसे आप रहते हो अभी अमेरिका में, जन्मे यहाँ पर, हम भी अमेरिका आते तो हम विहार करके आते हैं वहाँ पर, या आप यहाँ पर विहार करके आते हैं, आपका हमेशा रहने का ठिकाना कौन सा है? उसको कहेंगे स्वस्थान स्वस्थान। देवों का अपना रहने के जो है, हमें अभी सौधर्म ईशान की वगैरह सबकी बात करते थे, अपने अपने विमानों में रहते हैं और विहार करके यहाँ पर भी मध्यलोक में भी आते हैं, वो पंचकल्याणों को में आते नहीं है सारे देव, या घूमने के लिए भी जाते हैं, उनका विहार वाला एरिया, नरकों में भी जाते हैं, वहां पर तीसरे नरक पर गमन करके जाते हैं, ये विहार करके जाते हैं। वहाँ विक्रिया भी आते हैं, अभी विहार कितना उसमें विहार करना के, क्योंकि विहार के काल में भी विक्रिया से विहार करते, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना मूल शरीर वहीं रहता रहता है, कंफ्यूजन है, मन तो ये अलग अलग माना है, तो मूल शरीर के साथ भी तो विहार करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको लेना है। और विहार की एरिया पूरी लिए 8 योजन, 8/14 वाली। पेज 26। हाँ, 26 पेज पर आप फिर निकाल कर देख सकते हैं शोभा, स्वस्थान किसको कहना और विहारवत किसको कहना वहाँ बताया है। हाँ, पेज नंबर 26 आप निकालो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, उसमें ये ऐसा लिखा है, अपने उत्पन्न होने के ग्राम में नगर में अथवा अरण्य में सोना बैठना चलना आदि व्यापार से युक्त होकर रहने का नाम स्वस्थान स्वस्थान है। अपने नगरों में भले अभी हम बम्बई में इधर उधर घूमते हैं, वो तो अपना वो स्वस्थान ही कहलाएगा। और अपने उत्पन्न होने के ग्राम नगर अरण्य आदि को छोड़कर अन्यत्र शयन निशीदन और परिभ्रमण आदि व्यापार से युक्त होकर रहने का नाम विहारवत स्वस्थान है। शयन है ना सोना, निशीदन यानी बैठना, परिभ्रमण करना यानी अपने को छोड़कर अन्यत्र, जैसे हम अन्य अभी यहाँ से उठकर देवलाली गए तो वहाँ हम कुछ दिन रुककर फिर वापस से यहाँ अपने मूल गांव में आ गए, तो हम विहार करके आए, ऐसा कहेंगे ना, ये घूमने जाते हैं कहीं, वो विहार वाली बात होगी। हाँ हाँ, हाँ ऐसा भी आया था, जो अपना है ऐसा मानता है ना उसको भी स्वस्थान कहा था, ये मेरा था। वो सबको अपना मानता है, ये पृथ्वी हमारी है। मेरा मानने के लिए क्या उसको। हाँ हाँ देखो देखो
तेरा क्वेश्चन था, अमिंद्र है उसको विक्रिय करने, विक्रिय शरीर करने का कारण क्या रहता है?
अमिंद्रों को
वैक्रियक शरीर धारण करने का कारण क्या होता है?
कारण क्या होता है? उनके शरीरों की ऐसी दिव्यता है कि वो विक्रिया करते हैं। कारण कुछ नहीं है, कारण क्या हम समझते हैं? है किधर घूमना है, किसी को मारना है, ऐसा। जैसे हमने देखा ना देवों की, जो नीचे के देवों में सेनाएं वगैरह होती है, अनेक जाति के देव, एक एक जो देव कितनी कितनी सेना बनाते, सैकड़ों। पेज नंबर 32 पर भी बात वो है, वही स्वस्थान और उसकी बात। एक 26 नंबर बताया और एक 32 नंबर है। नए पैराग्राफ में ऊपर से चौथी लाइन यहाँ लिखा है ना, त्रसम में से जो भी संख्यात्व भाग प्रमाण राशि विहार करने वाली है, क्योंकि यह मेरा है ऐसी जो बुद्धि से स्वीकार गया क्षेत्र है वो स्वस्थान है, और उसके बाहर जाकर रहने का नाम है विहार वर्ग। हाँ विहार करके गई थी अपनी मम्मी अभी। हाँ अभी यहाँ पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 81 पर है, यहाँ हम सर्वार सिद्धि की बात कर रहे थे। तो कहते वहाँ के जो स्वस्थान है, विहारवत है, वेदना है, कषाय है, वैकीरिक समुद्घात है, उनमें मानुष्य क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। समझ में आई बात ये? क्योंकि उनकी एरिया छोटी है विमान की, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घातगत देवों के उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाला स्तोक उत्स्फूर्जन होता है, यानी प्रदेशों का फैलना बहुत कम होता है। वहां तो सारे शुक्ल रेशा वाले होते हैं ना, अर्थात तो उत्स्फूर्जन यानी बाहर फैलना, तो कहने कम, अल्प उत्स्फूर्जन होता है। उक्त तो दोनों समुदायों में आगे लिखा है देखो, आत्म प्रदेशों का बाह्य विस्तार बहुत कम होता है। तो हमने पहले भी देखा था, एक प्रदेश से लेकर तिगुणे तक हो सकते हैं नीचे सर्वत्र, उनका तो बहुत अल्प होगा, नहीं के बराबर। हाइट तो कम है, परंतु ऐसा प्रदेश ज्यादा फैलना नहीं होता है। इस अपेक्षा उक्त प्रकार का उपदेश दिया है, अथवा कारण में कार्य का उपचार से युक्त प्रकार का उपदेश दिया है। इस प्रकार गति मार्गणा समाप्त हुई। गति मार्गणा में पहले हमने नारकियों की बात देखी, फिर तीर्यंचों की, फिर मनुष्यों की, फिर देवों की। अब हम दूसरी मार्गणा चालू करते हैं, उसका नाम है इंद्रिय मार्गणा। पहले गति की अपेक्षा संसारी जीवों के भेद देखे। अब सोनीबेन आपको इंद्रिय कितनी वाला, कितनी इंद्रिय वाला जीव है उसकी अपेक्षा सभी संसारी जीवों के भेद करने, तो कौन कौन से भेद हो सकते हैं, कितने कितने इंद्रिय वाले जीव होते हैं अलग अलग, आपको मालूम है सब? हाँ बोलो। हाँ तो एक इंद्रिय जीव होते हैं, द्विइंद्रिय जीव होते हैं, तीनइंद्रिय जीव होते हैं, चतुरइंद्रिय जीव और पंचइंद्रिय, पांच ही भेद है। अब देखो पहले हमने क्या देखा था, देव गति अलग, नरक गति अलग, तीर्यंच गति अलग, मनुष्य गति, उसमें से देव मनुष्य और नारकी तो सारे पंचइंद्रिय में आ गए, और तीर्यंचों में इतने सारे भेद हो गए, एक इंद्रिय से पंचइंद्रिय तक के सारे भेद, ख्याल में आती है? तभी हम यहाँ इंद्रिय के मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे। अभी वो पंचेंद्रिय वाला जीव देव है कि नार की, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, कितनी इंद्रिय वाला है उतनी बात करेंगे।
मेरा एक प्रश्न है।
हाँ
भगवान के स्थावर है।
आपका प्रश्न है अरिहंत भगवान त्रसय के स्थावर है, आपने सही उत्तर दिया, त्रस है। त्रस नाम कर्म का जिनके उदय है वो त्रस जीव है, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर जीव है। नहीं तो आप पूछेंगे तो गमन करते हो पानी जल और वायु तो वो त्रस है कि स्थावर है। उनके स्थावर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। अब यहाँ देखते हैं इंद्रिय मार्गणा की बात अभी पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम इंद्रियाणु वादेना ए इंद्रिया बाजरा सुहमा पज्जत्ता अपज्जत्ता केवड़ी खेते सव्व लोगे। एक इंद्रियों के भी भेद कर दिए क्योंकि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय मूल भेद हुए। अब एक इंद्रियों में सूक्ष्म भी होते हैं बादर भी होते हैं पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते। तो यहाँ पूछते हैं हिंदी में पढ़ेंगे इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रिय जीव बादर एक इंद्रिय जीव तो एक इंद्रियों से कुछ अलग है नहीं। अभी हम भेदों की चर्चा कर रहे हैं जैसे हमने मनुष्यों में सामान्य मनुष्य फिर पर्याप्त मनुष्य मनुष्य नहीं आई भेद देखे थे। अब यहाँ एक केंद्रियों ए तो जनरल टर्म उनमें से बादर एक केंद्रीय सूक्ष्म एक केंद्रीय जीव। अब बादर में भी पर्याप्त पर्याप्त भेद करेंगे बादर एक केंद्रीय पर्याप्त जीव बादर एक केंद्रीय अपर्याप्त जीव सूक्ष्म एक केंद्रीय पर्याप्त जीव और सूक्ष्म एक केंद्रीय अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं तो कितने सर्वलोक में रहते हैं। आप कहेंगे बादर कहाँ सर्वलोक में रहते हैं सूक्ष्म सर्वलोक में रहते होंगे ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर
संख्या संख्या की अपेक्षा
बादर निगोद भी होते हैं ना कितने अनंत। अब एक जीव तो एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश रोकता है असंख्यात प्रदेश तो रोकेगा ही निगोद भी क्यों ना हो मिनिमम भी अवगाहना वाला तो ऐसे जीव अनंत है तो पूरा लोक कवर हुआ ना उनके अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा। बादर में वो कौन से है वायु का के उसकी चर्चा नहीं की यहाँ पर सभी बादर इसमें आ गए। पर्याप्त तो भी निगोद होते अपर्याप्त भी तो अनंतों की संख्या है इसलिए उनकी एरिया कैलकुलेट करेंगे तो पूरा लोक हो जाता है। सूक्ष्म जीवों को तो रहने का ही पूरा लोक है। अब यहाँ आते हम आगे 82 पेज पर 82 इस सूत्र में लोक पद के निर्देश से पांचों लोगों का ग्रहण किया है क्योंकि यहाँ लोक पद का निर्देश देशामर्शक है। यहाँ क्या लिखा है पूरे लोक में रहे सर्वलोक में। सूत्र में बादर और सूक्ष्म आदि वचन से स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैक्रिक समुद्घात देखो एक इंद्रियों में भी वैक्रिक समुद्घात लिया मानातिक समुद्घात और उपपाद पद से परिणत हुए जीवों का ग्रहण किया है क्योंकि उक्त छह प्रकार की अवस्थाओं के अतिरिक्त बादर आदि जीव नहीं पाए जाते हैं यानी बादर जीव उनके अपने अपने अवस्थाओं में पाए जाएंगे। शंका यदि ऐसा है तो सर्व सूत्र देशामर्शक ही है यानी हर सूत्र में से देशामर्शक कहकर अर्थ निकालते हो तो सभी सूत्र देशामर्शक ही होते हैं क्या क्योंकि सर्व सूत्र देशामर्शक ही है यह नियम नहीं है क्योंकि सूत्रों में दोनों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं अर्थात कुछ सूत्र देशामर्शक है और कुछ नहीं यानी कुछ सूत्रों में तो उस सूत्र में पूरा गर्भित हो जाता है उसमें अलग से उसकी बात बतानी नहीं पड़ती इसलिए सभी सूत्र देशामर्शक ही है यह नियम नहीं किया जा सकता। हम हमेशा बोलते हैं ना अपनी ओर से कोई नियम नहीं बनाना वैसे यहाँ पर भी ये शंकाकार पूछता है ये सूत्र है ना देशामर्शक तो कहते ऐसा नहीं है। अब कहते स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात ये क्या छोड़ा यहाँ पर यहाँ क्यों क्यों छोड़ा कौन सी मार्गणा चल रही है एक इंद्रिय की एक इंद्रिय जो विहार करके जाते हैं क्या चल कर नहीं जा रहे ये पानी का वायु का बहना ये जो बहना वगैरह है वो विहार नहीं है वो विहार गति नाम कर्म का उदय त्रसों के होता है त्रस पर्याप्तों में विहार कहेंगे एक इंद्रियों में विहार नहीं ये तीसरे अकेला स्वस्थान स्वस्थान लिया तो विहाय गति नाम कर्म विहाय गति स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए एकेंद्रिय जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते, क्योंकि एकेंद्रियों की संख्या अनंत है, तो पूरे लोक में तो कहीं ना कहीं मरकर कोई ना कोई कहीं जा ही रहा है। मारणांतिक उपपाद की अपेक्षा रहने का तो पूरा लोक हमने पहले नक्की कर लिया था, और जहाँ रहते हैं उसमें वेदना और कषाय में प्रदेश और बढ़ जाएंगे, तो पूरा लोक बता ही दिया है। वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुए एकेंद्रिय जीव हमने देखा था, बादर वायु का एक पर्याप्त और अग्नि का एक पर्याप्त, जो वो जीव विक्रिया करते हैं उसमें से कुछ, तो सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, किंतु मानुष्य क्योंकि एट ए टाइम करने वाले लेना, देखो उसकी जो स्पर्शन लेंगे तो पांच राज्य तक लेते लोक का संख्या प्रभाव, यहाँ तो उसकी जो एट ए टाइम करने वालों की संख्या उसको गुणा करना है, उसको वो पूरी एरिया कवर नहीं हो रही, किंतु मानुष क्षेत्र के संबंध में नहीं जाना जाता कि उसके कितने भाग में रहते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में इस प्रकार का विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता। यानी वैकिरिक समुद्घात को प्राप्त हुए जो एकेंद्रिय जीव है वो मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा उनकी एरिया कितनी है इसका उपदेश नहीं है, इसलिए वो आचार्य भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। आगे इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। विक्रिया को उत्पन्न करने वाली एकेंद्रिय जीव राशि पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, उनकी संख्या बता दी, अथवा विक्रियात्मक एकेंद्रिय जीवों के शरीर की अवगाहना उच्छेद घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है, यानी रेगुलर जो घनांगुल का असंख्यातवा भाग। एक जीव की अवगाहना इतनी है और उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग से गुणा करेंगे। शंका, उच्छेद घनांगुल में जिसका भाग देने से उच्छेद घनांगुल का असंख्यातवा भाग लब्ध आता है, उस असंख्यातवे भाग का प्रतिभाग क्या है? यानी जो हमने असंख्यातवा भाग कहा वो असंख्यात भाग की वैल्यू क्या है? पल्लोपम का असंख्यातवा भाग प्रतिभाग है, अर्थात पल्लोपम के असंख्यातवे भाग का उच्छेद घनांगुल में भाग देने से उच्छेद घनांगुल का असंख्यातवा भाग लब्ध आता है, जो विक्रियात्मक एकेंद्रिय जीव के शरीर की अवगाहना है। समझ में है ना? जिसको हम घनांगुल का असंख्यातवा भाग कहते हैं, वो प्रमाण घनांगुल की बात नहीं, उच्छेद घनांगुल की बात। अब कहते ऊपर विक्रिया करने वाली एकेंद्रिय जीव राशि भी पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण बताई, देखो क्या कहना चाहते हैं। एक जीव की अवगाहना कितनी है? इतनी है। वो इतने के लिए क्या कहा उन्होंने? उच्छेद घनांगुल, हम घ लिखेंगे, उसका असंख्यातवा भाग। कौन सा असंख्यातवा भाग? तो कहते पल्ले के असंख्यातवे भाग से उसको भाग दो। और ऐसे कितने जीव एट ए टाइम कर रहे हैं? तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव एट ए टाइम विक्रिया कर रहे हैं, तो इसको भाग भी इसका दिया, तो इसको इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला गया एक नीचे, तो क्या ये कैंसिल होगा? क्या समान है? क्योंकि पल्ले के असंख्यातवे भाग में भी वेरिएशन बहुत है, तो ये वाला पल्ले का असंख्यातवा भाग बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है, क्या है उसके बारे में अभी पूछ रहे बता रहे। दो है ना पल्ले का असंख्यातवा भाग, एक अवगाहना में जिससे भाग दिया था वो पल्ले का असंख्यातवा भाग, और विक्रिया करने वाली राशि भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसके बारे में अभी कथन कर रहे हैं, उसको हम पढ़ा नहीं अभी, हम उसके पहले ये बात बताई आपको पेज नंबर 83 पर। ऊपर विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि भी पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाई है और उच्छेद घनांगुल का भागहार भी पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। इन्हें अवगाहना लाने के लिए जो भागहार था वो भी उतना है, एक जीव की अवगाहना लाने के लिए उतना ही भागहार था। इसलिए विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार क्या छोटा है या बड़ा है या समान है यह कुछ नहीं जाना जाता। कौन सा वो पल्ले का असंख्यात्व भाग छोटा बड़ा इसके बारे में कोई उपदेश नहीं। अब यदि एकेंद्रीय वैक्रियक राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा है ऐसा लेते हैं, देखो अभी क्या करना है, ये एक जीव की अवगाहना मल्टीप्लाई अनेक जीवों की पल्ले का असंख्यात भाग इंटू घनांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात भाग। अब उन्होंने दो तीन ऑप्शन बताए क्या, अभी इस राशि से एकेंद्रीय वैक्रियक राशि से ये भागहार यदि संख्यात गुणा होगा यानी इसको इसे भाग देते मान लेते ये चार हो जाए, यहाँ पर भागहार बड़ा है चार गुना है मान लेते हैं तो क्या होगा, ऐसा लेते हैं तो विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि मानुष क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है ऐसा अभिप्राय निकलता है। ये अगर उसका भागहार ज्यादा होगा तो मानुष क्षेत्र के संख्यातवे भाग में रहते, अथवा विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार असंख्यात गुना लेते हैं तो वह राशि मानुष क्षेत्र के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है यह अभिप्राय होता है। पहले संख्यातवे भाग प्रमाण, यदि ये भागहार असंख्यात गुणा हो जाता है हाँ तो असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहेगी, और यदि विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार समान है ऐसा लेते हैं तो वह राशि मानुष्य क्षेत्र के संख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है यह अभिप्राय। पहले भी संख्यात्व ही कहा था उन्होंने, मान रहे ये कैंसिल हो गया और घनांगुल प्रमाण हो जाएगा वो संख्यात्व भाग हो जाता है। परंतु यहाँ पर मानुष्य क्षेत्र का इतना ही भाग लिया गया है ऐसा कुछ भी निश्चय नहीं है, यानी यहाँ तो कहीं उसका उपदेश अवेलेबल नहीं है, इसलिए मानुष क्षेत्र के संबंध में कुछ भी नहीं जाना जाता। आचार्यों ने भी अपनी ओर से कुछ नहीं बताया कि विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि उसके कितने भाग में रहती है यह नहीं जाना जाता, यह सिद्ध हुआ। अब एकेंद्रीय राशि की बात उन्होंने बता दी, अब उसके एक एक भेदों को लेंगे तो बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों की पहले बात उठाते हैं। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए बादर एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव, एक तो जनरल बादर एकेंद्रीय कहने से पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ गए और बादर एकेंद्रीय पर्याप्त कहने से स्पेसिफिक पर्याप्तों को ही ले, केवल सामान्य लोक आदि तीन लोकों के संख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं उनका रहने का ठिकाना। तथा मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वो संख्यात्व भाग क्यों कहा उसकी बात यहां बता रहे। मंदराचल के मूल भाग से लेकर, मंदराचल क्या होता है, मेरु, उसका मूल भाग कहाँ है, नीचे नीचे, ऊपर शतार और सहस्रार कल्प तक पांच राजू उच्छेद रूप से, उच्छेद यानी हाइट, सुदर्शन मेरु के डेप्थ से लेकर मूल भाग से लेकर ऊपर शतार और सहस्रार कल्प तक यानी वो पांच राजू ऊपर तक समचतुरस्र लोक नाली वायु से परिपूर्ण है, यानी जो जिसको हम त्रस नाली जिसको कहेंगे, वो कहाँ से, मेरु के तल से लेकर पांच राजू हाइट तक वायु से पूरी भरी हुई है। हाँ वो बादल है ना सारे वायु का एक, हाँ वायु से परिपूर्ण है। अब उसे जगत प्रतर के प्रमाण स्वरूप करते हैं, कैसा कैसा है? त्रस नाली ऐसी एक राजू, ऐसी एक राजू, तो क्या हुआ, राजू स्क्वायर हुआ, उसको पांच से गुणा करेंगे। यहाँ तो जगत प्रतर करना है ना, तो पहले पांच गुना एक करेंगे, पांच प्रतर राजू लेंगे, ऐसा पांच राजू और ऐसा एक एक राजू, तो प्रतर राजू हुआ। अभी गणना नहीं किया हमने उसको, पांच प्रतर राजू, तो उनचास प्रतर राजुओं का, उनचास प्रतर राजुओं का एक जगत प्रतर होता है, उनचास स्क्वायर राजू का एक जगत प्रतर, तो पांच का कितना होगा, संख्या का भाग हो ना, और उसको और एक राजू से गुणा करेंगे। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अब उसे जगत प्रतर के प्रमाण स्वरूप करते हैं। यदि 49 प्रतर राजुओं के एक पटल का एक जगत प्रतर प्राप्त होता है, तो पांच राजु प्रमाण, पांच प्रतर राजुओं का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार त्रैराशिक करके एक जगत प्रतर प्रमाण फल राशि से पांच प्रतर राजु प्रमाण इच्छा राशि को गुणित करके, यानी 49 का एक तो पांच का कितना, 49 प्रतर राजु प्रमाण प्रमाण राशि से भाजित करने पर क्या होगा, 5/49 हो जाएगा, 2/5 कम 69 से घनलोक के भाजित करने पर जो एक भाग होता है उतना लब्ध आता है, जो कि पांच घनराजु प्रमाण है। टोटल उन्होंने काउंट किया, अभी हमने प्रतर कितने लिए, 5/49, उसको एक राजु से गुणा करेंगे तो घन में आ जाएगा, क्या होगा, 5/49 घनराजु आ जाएगी। और जो एक राजू है उसको जगत श्रेणी में करेंगे फिर से, क्योंकि हमको घनलोक की अपेक्षा बात करनी है। हमारे पास त्रस नाली है, एक राजू बाय एक राजू, और ये पांच राजू, यहाँ तक तो वायु है, इसके एरिया कैलकुलेट करनी है। हम डायरेक्ट करेंगे तो पांच राजू गुना एक राजू गुना ऐसा अंदर एक राजू, यानी 5×1×1 अपनी भाषा में करेंगे तो पांच घन राजू आ गए, पांच घन राजू। 343 घन राजू का एक लोक, पांच घन राजू का कितना होगा, 5/343, यानी 343 का ये संख्यात्वा भाग आया, और लोक का संख्यात्वा भाग होता है, यही यहाँ कहना चाहते। उन्होंने अलग अलग पद्धति अपनाई, कैसे, पहले 5×1 को किया तो 5 प्रतर राजू आ गए, प्रतर राजू, उसके जगत प्रतर करना है तो 49 प्रतर राजू का एक जगत प्रतर होता है, तो 5 का कितना होता है, तो 5/49 हो गए। इसको एक राजू से गुणा करना है, एक राजू करो कहो, या उसको जगत श्रेणी के प्रमाण से करो, तो 1/7 श्रेणी का सातवां भाग है ना, वही तो एक राजू है, उससे गुणा करेंगे तो 5/343 आ जाएगी, वही तो हमने निकाला था पहले, 5/343। ये कैलकुलेशन करके संख्यात्वा भाग कैसा है उसने बात बता दी, हो गया समय। हाँ देखो ये इतना पूरा करते हैं, एक इतना लब्ध है जो कि पांच घनराजू प्रमाण है। समझ में है ना, ये पांच घनराजू डायरेक्ट भी निकाल देना। तो ये आगे के पेज पर उदाहरण देखो, 84 पृष्ठ पर उदाहरण, एक गुणा पांच पांच हुए। अभी उसको अगर हम उसका यूनिट लिखेंगे तो एक राजू इंटू पांच राजू रा लिखूंगी तो क्या पांच क्या हो गया, प्रतर राजू। पांच को 49 से भाग दिया तो ये जगत प्रतर प्रमाण करना है ना, 49 प्रतर राजू का एक जगत प्रतर, तो पांच प्रतर राजू का कितना होगा, तो 5/49 जगत प्रतर, इसका यूनिट अभी जगत प्रतर हुआ। चूंकि यह वात परिपूर्ण क्षेत्र यानी वायु से पूरा भरा हुआ क्षेत्र, एक राजू मोटा है, पहले उन्होंने हाइट पांच राजू और एक ही बाजू की विड्थ ली एक राजू, तो एक स्क्वायर ऐसा निकाला आया। अब वो ऐसा कितना है, तो एक राजू और, अतः वह पांच घन राजू हुआ जो कि 343/1 डिवाइडेड बाय वही वो इसी को उन्होंने 343/5 किया था उन्होंने, 5 + 30 = 85 = 3/5 इज इक्वल टू 5/343 घनराजू प्रमाण होता है। उसी को उन्होंने उल्टा किया यानी 5/343 आया घनलोक। ये घनलोक उसका यूनिट है। पांच घनराजू इज इक्वल टू 5/343 घनलोक। यही रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूये लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देखो।